एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अनुवाद शिल प्रभुपाद के द्वारा। हे अर्जुन, जो मेरे जन तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता, पांच पहलू, जनन वर्णन वंदन सांत्वन और गमन। तो अब तक हम कितने पहलू चर्चा कर चुके हैं? हम चौथे पर हैं, सांत्वन। देवकी और वसुदेव ने प्रार्थनाएं अर्पित की, देवताओं ने प्रार्थना अर्पित की, और जितने भगवान के भक्त अप्रकट रूप से प्रार्थना अर्पित किए भगवान के जन्म पर, तत्पश्चात भगवान ने अपनी ओर से सांत्वना, विशेष रूप से देवकी और वसुदेव को सांत्वना दिए भगवान। यहां पर जैसे हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने देखा, देवकी विशेष रूप से उनका मनोभाव चिंता का था कि कंस ने इतने पुत्रों को मार चुका है, वो देवकी के, तो चिंता में देवकी भगवान की ओर देख रही है। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, अपने सारे आयुध दिखाए और सांत्वना दी कि यदि कोई शिशु ऐसे आयुधों के साथ पैदा हो सकता है तो अपनी स्वयं की सुरक्षा भी कर सकता है। परंतु माता देवकी, इनका वात्सल्य भाव था, इसलिए उस वात्सल्य भाव में उन्हें सांत्वना की आवश्यकता थी उस समय। तो हम काफी हमारे पिछले बुधवारों से सांत्वना इस पर हैं, और विशेष रूप से हमने सांत्वना के संदर्भ में ये मुद्दा लिया, क्योंकि यदि शुद्ध भक्ति के स्तर को न समझें तो हम भगवान से किस प्रकार की सांत्वना की अपेक्षा रखते हैं कि भगवान मेरी परिस्थिति को सुधारें। और अधिकांश, चाहे किसी भी धर्म को आप लो, ये बताया जाता है कि आपको यदि आपकी परिस्थिति सुधारनी है तो आपके निर्धारित भगवान के पास जाइए, याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और उसके बदले आपकी परिस्थिति वो सुधारेंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण वो अपने भक्तों के साथ बहुत विशेष रूप से डील करते हैं, इसलिए भगवद गीता, जो कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का सर्वोपरि ग्रंथ है, और भगवद गीता के नायक अर्जुन प्रमुख नायक। अर्जुन की परिस्थिति भगवान ने बदली नहीं, अर्जुन की मनस्थिति बदली। तो यदि हम ये जो परिस्थिति और मनस्थिति, कितना इसमें द्वंद्व चलता रहता है हमारे अंदर, विशेष रूप से जब हम मनुष्य जीवन को प्राप्त करते हैं, तो मनुष्य जीवन में ये जो मन है वो इतना शक्तिशाली है और इतना हावी रहता है हमारे शरीर के ऊपर। इस पर हमने चर्चा की कि जो निचली योनियां हैं, पशु योनि, उनका जो शारीरिक स्तर है वो इतना शक्तिशाली होता है कि मन ये सब की तकलीफें उनको नहीं होती कि डिप्रेशन में है, कुत्ते डिप्रेशन में हैं या कौवे वो डिप्रेशन में चले गए, नहीं। परंतु मनस्थिति की जब हम चर्चा करते हैं तो मनुष्य, और देखिए कैसे ये मन हमारे साथ खेलता है कि एक ही परिस्थिति उसको विभिन्न प्रकार के मनुष्य जब देखते हैं, तो चाहे आप आजकल जो क्रिकेट चल रहा है, अब ये क्रिकेट गेम, इस क्रिकेट गेम को जब भारत देखता है, जब भारत खेल रहा है और पूरा भारत देश देखता है, तो भारत देश की मनस्थिति क्या होती है? और उसी गेम को दूसरा कोई देश देख रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कोई सरोकार नहीं उस गेम से, कई ऐसे देश हैं जैसे अमेरिका, अमेरिका को क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। राधानाथ महाराज कहते हैं उनके लिए क्रिकेट मतलब एक कीड़े का नाम है, अंग्रेजी में कीड़े का नाम है क्रिकेट। परंतु भारत में आप यदि क्रिकेट के फैन नहीं हो, आप यदि जानते नहीं हो कि इंडिया कहां तक पहुंच गया है, बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं अभी आजकल चल रहा है जो, आप जानते हैं क्या इंडिया कहां तक पहुंच गया? सेमीफाइनल तक पहुंच गया इंडिया। तो कई बार देखा है कि इंडिया की टीम जब जीतती है तो पटाखे बजते हैं, है ना। मैंने कहा मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मैं जब रात में सोने जाता हूं तो 11:30 बजे जब पटाखे बजते तो समझ में आ जाता है मुझे क्या हुआ है। तो इंडिया की टीम जब जीतती है तो पटाखे बजते हैं, और वही टीम जब हार के आती है तो उनको बजाते हैं। कभी फूलों की माला, कभी चप्पलों की माला, सब फेर बदल किसका है? मनस्थिति। एक बार एक व्यक्ति, उसका एक आलीशान घर था और कुछ दिन के लिए व्यापार संबंधित वो अपने शहर से बाहर गया, तो बहुत उसे लगाव था, बहुत आसक्ति थी उसे उस घर में, उस बंगले में। तो जब वो लौटा, उसने देखा कि उसका वो आलीशान घर जल के राख हो रहा है। कल्पना कीजिए, उसने अपने पूरे जीवन की संपत्ति उसमें लगाई थी और वो जल के राख हो रहा है। तो बस अब हार्ट अटैक उसको आना ही था। अब देखिए, घर जल रहा है उसे, लेकिन जलन अंदर हो रही थी, हृदय उसका अंदर से जल रहा था। तभी उसका बड़ा बेटा आता है और आकर उसको बोलता है, पिताजी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैंने परसों ही अपने मकान की डील कर दी है और 3 गुना ज्यादा रकम अदा कर रहा है वो व्यक्ति, तो ये अपना नहीं है, हमको इसकी 3 गुना ज्यादा रकम मिलने वाली है। तो अब देखिए यही व्यक्ति, वही स्थिति है, घर अभी भी जल रहा है, ऐसा नहीं कि घर जलना रुक गया है, घर अभी भी जल रहा है। तुरंत एक मुस्कान, मीठी सी मुस्कान उसके चेहरे के ऊपर। फिर उसका दूसरा बेटा आता है, दूसरा बेटा बोलता है, पिताजी डील तो हो गई है लेकिन उसने अभी तक रकम नहीं अदा की है, केवल डील हुई है। फिर से ऐसे 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 ऐसे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसको जब पता चलेगा कि जो घर के डील हुई है वो घर तो जल के राख हो रहा है, तो अब वो नहीं खरीदेगा, डील कैंसिल कर देगा, ये वापस से मनस्थिति बदल गई, परिस्थिति वही है, मनस्थिति बदल गई। फिर तीसरा बेटा आता है, वो कहता है, पिताजी चिंता मत करो, चेक हमारे पास है उसका, उसने चेक काट कर दे दिया है, बस कल उसको हमको बैंक खुलते ही इन कैश करना। फिर से वही मीठी मुस्कान। तो हुआ क्या, परिस्थिति वैसी की वैसी थी, उस परिस्थिति को इस व्यक्ति ने अपनी मनस्थिति के अनुसार उसमें सुख देखा, उसमें दुख देखा, उसमें सफलता देखी, उसमें असफलता देखी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है, द आइसबर्ग थियरी। और ये क्या है, जैसे हिमाशील जिसको बोलते हैं हिंदी में, शायद आइसबर्ग ज्यादा इजी रहेगा, तो ये जो बर्फ, ये हिम का एक बहुत बड़ा एक गोला, और दिखता है पानी के सतह के ऊपर कई बार केवल इतना सा, परंतु पानी के सतह के नीचे उसका जो अधिकांश भाग है वो रहता है, जो कि दिखता नहीं है। जैसे यहां पर इस प्रकार से ये दर्शाया गया है कि हमें दोनों दिख रहा है, ये जो बड़ा वो जहाज था टाइटैनिक, और टाइटैनिक किससे टकराया था, इस आइसबर्ग से ही टकराया था, दिख नहीं पाया, और वो इतना बड़ा जहाज अपने पहली यात्रा में डूब गया सबको लेकर। तो ये आइसबर्ग थियरी क्या है, कि केवल कुछ 15% भाग उसका ऊपर दिखता है, पानी के ऊपर दिखता है, और बाकी 85% उसका पानी के अंदर छिपा हुआ रहता है। उसी प्रकार से हमारे इस मनुष्य जीवन में जो दिखता है वो बहुत कम प्रतिशत होता है, परंतु वो जो 15% दिखता है, जो कि परिस्थिति है हमारी, और वो 15% हमारी परिस्थिति वो किसके आड़े छिपे हुई है, 85% हमारी मनस्थिति। इसलिए हम देखते हैं कि विशेष रूप से कलयुग में जो भौतिक जीव है वो हर समय किस पर फोकस रखता है, मेरी परिस्थिति, कंडीशन वर्सेस कॉन्शियसनेस, मेरी परिस्थिति कैसी है, मैं दिखने में कैसा हूं, बोलने में कैसा हूं, कपड़े कैसे हैं, मकान कितना बड़ा है, गाड़ी कितनी है, ये सारी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, ये मेरी जो बाहरी परिस्थिति है, ये दुनिया में, ये समाज में कितना अच्छी से दिख रही है, परंतु हमने देखा है कि ऐसे ऐसे शख्स जिनकी बाह्य परिस्थिति यदि कोई साधारण सर्वसाधारण व्यक्ति देख ले तो ईर्ष्या करे। मेरे गुरु बंधु वो एक किस्सा बताते हैं बंबई में कि उनके एक मित्र, उन्होंने एक आलीशान गाड़ी खरीदी और वो ऐसी गाड़ी है कि पूरे बंबई शहर में किसी के पास नहीं थी वो वाली गाड़ी। जैसे आजकल जो भी नए नए मॉडल निकलते हैं तो उनका एडवर्टाइजमेंट होता है और जो ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हैं वो लेना चाहते हैं, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, ये सब जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो वैसे ये शख्स ने एक लैम्बोर्गिनी, नासिक में तो सुना भी नहीं होगा, हम सोच रहे होंगे ये गाड़ी का नाम है, हाँ बहुत ऊंचा ब्रांड है गाड़ी में, बहुत कॉस्टली, तो एकदम वो स्पोर्ट्स कार जैसी पूरे बंबई शहर में किसी के पास नहीं, यदि रास्ते सड़क पर ले जाए तो पूरा बंबई शहर जल जल कर देखे, ऐसी वो गाड़ी। तो ऐसी गाड़ी उन्होंने ली और उन्होंने फिर हमारे ब्रह्मचारी को न्योता दिया कि पहला राइड आप आना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बुला रहे हैं तो आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। वो बैठे, ये चला रहे गाड़ी, वो बगल में बैठे हैं, बंबई की सड़कों, साउथ बॉम्बे की सड़कों में गाड़ी सब लोग देख रहे हैं, सिग्नल पर गाड़ी रुकी, ये वो प्रभु जी से बातें कर रहे हैं, प्रभु जी थोड़ा सिग्नल रुकी तो यहाँ वहाँ देख रहे हैं, बगल में एक और गाड़ी रुकी, मारुति 800 टाइप थी वो, वो व्यक्ति अपना सिग्नल पर कोई गाने वाने सुन रहा था, अचानक उसकी नजर ये गाड़ी पर पड़ी, तो पहले तो गाड़ी देखकर वो स्तब्ध रह गया और उससे ज्यादा स्तब्ध, गाड़ी में कौन बैठा ये, थर मुंडवाया हुआ साधु बाबा, लैम्बोर्गिनी में बैठा। तो ये हमारे प्रभु जी उसको ऐसी नजरों से देख रहे हैं, मेरी नहीं है इसकी है। इधर तो उसके सारे फीचर्स की क्या क्या इसके अंदर, इतने सारे ढेरों अलग अलग हाईटेक फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर वो बता रहे थे। फिर फाइनली जब आधे घंटे उस पर सवारी हो गई, अब तसल्ली हो गई, फिर ये मालिक इस गाड़ी का, ये गाड़ी को एक जगह पर, ऐसी जगह पर जहां पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, पार्क करता है, फूट फूट के रोने लगता है, और वो कोई खुशी के आंसू नहीं थे, फूट फूट कर रो रहा है। तो इन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई, आप अचानक रोने क्यों लगे? बोले मेरी बीवी मुझसे तलाक चाहती है। इतनी आलीशान गाड़ी, जो भी उनको इतना सब कुछ, वो ऐश्वर्य उस गाड़ी को प्राप्त करने का, वो खुशी, वो सब कुछ क्षणिक था। क्या था इसके नीचे, वो सारे आंसू दबे हुए थे, वो 85% जो आइसबर्ग है, 15% सब कुछ बाहर दिख रहा था, 85% नीचे रोने लगे वो, क्या करूं मैं, शादी अभी अभी हुई और वो तलाक चाहती है। तो इन्होंने पूछा ये गाड़ी लेने के बाद भी, वो भी कंफर्म करना जरूरी है, बाद भी मतलब सोचिए कि वो जो तलाक चाह रही है उसको इससे भी अच्छा कुछ प्राप्त हो रहा होगा। तो हम हमारे कॉर्पोरेट सेमिनार में ये जो पानी की सतह के नीचे का जो आइसबर्ग है उसको कहते हैं एटीट्यूड। हमारे जीवन को देखने का दृष्टिकोण, नजरिया। आप लोगों में से कितनों ने फटा हुआ मोजा पहना है? मोजा जानते हैं ना। एक हमारे घोष दादा थे ट्रेनिंग में, बंगाली बाबू, तो उनको हम थोड़ी थोड़ी बंगाली में पूछते थे कई बार कुछ प्रश्न। तो एक बार हमने उनसे पूछा, केमन आछे घोष दादा, केमन आछे? तो उन्होंने कहा, मोजे में। उन्होंने फिर हमसे पूछा, ये मोन अच्छे, मैं भी मोजे में, आप मोजे में, मैं भी मोजे में। हमने पूछा, भाभी कैसी हैं? एकदम मोजे में, पूरा पूरा। तो फटा हुआ मोजा, बहुतों ने हाथ ऊपर किया आप लोग ईमानदारी से। अब देखिए, मोजे में होल या एक छेद, अब उसको जब हम पहनते हैं तो दृष्टिकोण देखिए समझ में आता है कई बार। कि अब मुझे याद है जब मैं खेलकूद किया करता था तो अक्सर फट जाया करते थे मोजे, लेकिन फिर भी मैं उसको पहनता था कि वेस्ट क्यों किया जाए। एक ये दृष्टिकोण है कि उसे बर्बाद क्यों करें, खेलकूद में उसका इस्तेमाल कर सकते। एक दृष्टिकोण है कि अरे कौन देखता है, वो तो जूते के अंदर है, पहनते रहो। दोनों में फर्क है दृष्टिकोण। अर्थात जो इस दृष्टिकोण से उस मोजे को पहन रहा है कि ये तो जूते के अंदर है, कौन देखने वाला है, पहन लो, अर्थात जो भी वस्तु जूते के बाहर है वो उसे दिखाना चाह रहा है। अर्थात धीरे धीरे दृष्टिकोण हो रहा है दिखावटी। एक है किफायती, किफायती दृष्टिकोण, और एक है दिखावटी दृष्टिकोण। छोटी सी बात होगी, अ होल इन अ सॉक might be a very little thing, but how you look at it will determine your attitude towards life. इसलिए हाँ, अभी यदि टॉमी हिल फिगर का सॉक्स पहना है तो थोड़ी पतलून ऊपर होनी चाहिए तो दिखे। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी कंपनी का सॉक्स है? है, ऐसे भी हैं जो बहुत करोड़ों हजारों रुपए के सॉक्स आते हैं, ऐसे भी हैं। तो किफायती और दिखावटी उसके अंदर। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। ये जो आजकल अलार्म क्लॉक्स बनते हैं इसके अंदर स्नूज की फैसिलिटी होती है। इस्तेमाल किया आपने स्नूज की फैसिलिटी? सब वो सेलफोन में भी स्नूज होता है, जैसे ही सुबह सुबह वो यदि लगाया है तो अलार्म। सबसे पहले तो यदि लगाया है अलार्म तो उसमें दिखाता है स्नूज। तो आपने किया स्नूज किया है ना सबने, जब अलार्म बजा स्नूज किया। कितनों ने दो बार किया? एक ने दो बार। कितने तीन बार स्नूज किए कभी? कितना अच्छा लगता है वो जो पांच दस मिनट की नींद होती है, पहली बार जब वो अलार्म बजा है, अब स्नूज किया है, दस मिनट बाद वो जो बजने वाला है, इन दोनों के बीच की जो नींद है, ओए होए होए, हाँ क्या कहने। इसलिए मैं हमारे पिछले वो डिसीजन मेकिंग सेमिनार में बता रहा था, व्हाट इज द एक्सटेसी फॉर अ मॉडर्न मैन। एक्सटेसी फॉर अ मॉडर्न मैन इज व्हेन ही वेक्स अप से अराउंड 7 AM एंड रियलाइजेस ही डजंट हैव टू वेक अप। वाह, उठने की जरूरत नहीं है आज। उसके बाद वो जो आत्मविश्वास के साथ फिर सोता है, निसंकोच जो सोता है, वो है एक्सटेसी मॉडर्न मैन की। हाँ, तो हम आते हैं स्नूज। तो जब स्नूज कोई करता है, उसने यदि अलार्म लगाया है तो किसी कारण की वजह से लगाया है अलार्म, उसे उस समय उठकर कुछ जरूरी करना है इसलिए अलार्म लगाया। तो जब कोई स्नूज करके फिर सो जाता है तो वो क्या एटीट्यूड दिखा रहा है? वॉट एवर आई हैड डिसाइडेड लास्ट नाइट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू माय 10 मिनट स्लीप राइट नाउ। This is called attitude. तो जब हम हमारी जिंदगी में, अब इसको यदि हम हमारी जिंदगी में और परिणित करें, ट्रांसलेट करें, तो वो छेद वाला मोजा और वो 10 मिनट का नींद स्नूज करने के पश्चात, हम उसको जब मैग्निफाई करते हैं तो होता क्या है, धीरे 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 ये जो हमारा आइसबर्ग है ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर इसके वजह से हमारी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति हमारे मनस्थिति के अनुसार फिर उसमें फेर बदल दिखता है और हमें लगता है कि मेरा जीवन सही दिशा में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि सही दिशा में उस जीवन को जाने के लिए सबसे पहले दृष्टिकोण सही चाहिए। इसलिए हां, जो दिख रहा है या जो हम दिखा रहे हैं, हम झांसा दे सकेंगे आसपास के कुछ चंद लोगों की आंखों में, परंतु वो जो परवरदिगार जिसको कहते हैं, वो जानता है कि ये जो 85% नीचे है उसकी दशा क्या है, उसकी दशा क्या है। इसलिए ये जो मुद्दा है कि कई बार लोगों को लगता है कि मैं बस सफल हो जाऊं मेरे व्यापार में, व्यवसाय में, मेरे काम में, और वो सफलता बस मेरे जीवन की प्रमुख सफलता है। जैसे कि ये व्यक्ति पूरे बंबई शहर में पहली ऐसी कार जिसने खरीदी, करोड़ों की संख्या में जो बंबई शहर की जनसंख्या है उसमें से ये एक व्यक्ति ने, तो हाँ इतना सफल अपने आप को बाह्य रूप से वो मान रहा था या जो भी उसको मान रहे थे, परंतु फाइनली उसका जीवन इंटीग्रेटेड नहीं था, एक आइसोलेटेड सक्सेस। तो कहने का आशय ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने काम में हर समय ढीला रहता है तो वही दृष्टिकोण वो घर पर भी लेकर आएगा और यदि वो ये सोचता है कि घर पर ढीला रहूं काम पर मैं पक्का रहूंगा, नहीं, घर पर यदि वो ढीला है तो वही वो अपने साथ, क्योंकि काम पर कोई उसका जुड़वा भाई नहीं जाने वाला है, वही जाएगा काम पर. सो वॉट एवर एटीट्यूड ही इज कल्टिवेटिंग एट होम ही विल डेफिनेटली कैरी इट एट द वर्क प्लेस, एंड वॉट एवर एटीट्यूड विल बी एट द वर्क प्लेस ही विल कैरी इट एट होम. इसलिए आजकल हम देखते हैं कि जो आधुनिक मनुष्य है ये इसी कश्मकश में अपने आप को पाता है. नहीं समझ में आता है उसको कि वो एक आइसोलेटेड जीवन जी रहा है, इंटीग्रेटेड नहीं जी रहा है, आइसोलेटेड जी रहा है. और इंटीग्रेटेड जीवन जीने के लिए हमें सर्वप्रथम हमारी जो मनस्थिति है वो सुधारनी है. अब जैसे यहां पर ये मुद्दा है करेक्टिंग द रॉन्ग वर्सेस डूइंग द राइट. हमारे जीवन में हम यदि देखें तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हम गलत कर देते हैं, रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग एक्शंस, रॉन्ग वर्ड्स, रॉन्ग लाइफ पार्टनर, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, सब बहुत सारे करने के बाद उसका चयन कर लिया, वो डिसीजन ले लिया, वो निर्णय ले लिया, वो संग उसका कर लिया, वो शब्द बोल दिए, वो कार्य कर दिया, वो एक्शन सब कुछ होने के बाद हम कौन से मोड में चले जाते हैं अक्सर, वो रिग्रेट मोड में चले जाते हैं. देन वी स्टार्ट रिग्रेटिंग, लैमेंटिंग, एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम गोज इन ट्राइंग टू करेक्ट द रॉन्ग. मुझे याद है बहुत साल पहले राधानाथ महाराज के लिए मैं नींबू शरबत बना रहा था. फास्टिंग का दिन था, फास्टिंग के पश्चात फिर नींबू शरबत उनके लिए मैं बना रहा था. तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा नींबू शरबत स्ट्रांग होना चाहिए, फास्टिंग हुई है, थोड़ा साइट्रिक एसिड ज्यादा जाएगा, अच्छा रहेगा शरीर के लिए. तो गलती से डबल नींबू चला गया पानी में और वो इतना अब खट्टा हो गया वो नींबू शरबत, क्योंकि इतना डबल नींबू उसके अंदर चला गया. अब देखिए इसमें एक साक्षात्कार है जो मुझे समझ में आया कि जब आप नींबू शरबत बना रहे हो और एक्स्ट्रा नींबू चला गया पानी में, अब आप उस नींबू को उस पानी से अलग नहीं कर सकते, है ना. यू कांट टेक आउट द लेमन जूस फ्रॉम द वॉटर. तो क्या कर सकते हो, पानी ऐड कर सकते हो उसके अंदर और पानी ऐड कर सकते हो. तो मैंने यही सोचा कि इसके अंदर और पानी ऐड कर दिया जाए तो होगा क्या, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और चार लोग पी सकेंगे. जिंदगी भी देवी सज्जनों ऐसी ही है, जिंदगी ऐसी है. अक्सर हम नींबू पानी बनाने जाते हैं, एक्स्ट्रा डाल देते हैं और फिर यदि दिमाग नहीं लगा है तो उसी को पीते रहते हैं आंख नाक बन करके, उस खट्टे नींबू पानी. करना क्या है, यदि हम उसमें कुछ ऐड करें रादर देन करेक्टिंग द रॉन्ग ऐड द राइट. उसमें जब आप ऐड करोगे तो बहुतों का भला हो सकेगा. एक और उदाहरण मैं देता हूं. कई बार परिस्थितियां कैसी होती हैं, जैसे नींबू पानी का उदाहरण दिया आप, परिस्थितियां कैसी होती है, हमारे कंट्रोल के बाहर, कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है जैसे ये सब सब जो लिस्ट निकाला है हमने, ऐसे डिसीजंस ले लिए, ऐसे हमने कुछ शब्द कह दिए, एक्शंस वगैरह, तो सुबह सुबह आपने टूथपेस्ट मंजन करने के लिए टूथपेस्ट निकाला ट्यूब से। अब देखिए नींद में है, सबसे पहले तो टूथपेस्ट ही निकाला वो भी चेक कर लेना, ऐसे भी किस्से हुए हैं कि टूथपेस्ट के बदले और कोई ब्रश पे चढ़ा दिया और अच्छी खासी नींद और अच्छी से उड़ गई, फिर ऐसे भी किस्से हुए हैं। तो टूथपेस्ट आपने ट्यूब से बाहर निकाला और ज्यादा निकल गया, जितना जरूरत है उससे ज्यादा निकल गया। अब उस टूथपेस्ट को फिर से ट्यूब में डाल सकोगे? तो अब क्या करना है, क्या करोगे? टूथपेस्ट ज्यादा बाहर आ गया तो अपने भाई बहनों को बुलाओ, उनको दो, भाई तू ले ले आधा इसमें से शेयर। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है शेयर करने की। देयर वॉज अ मिस्टेक, यू प्रेस्ड टू मच and the situation was something which couldn't be undone. So therefore use that as an opportunity to do something better. इसको बोलते हैं परिस्थिति और मनस्थिति। फिर अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं भाग्य एवं परिश्रम कि कितना परिश्रम करना चाहिए और कितना हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमें मिलेगा, तो फिर परिश्रम करने की क्या जरूरत है, ऐसे भी आने वाला है। भाग्य से अधिक समय से पहले, है ना, ट्रक के पीछे सब लिखे होते हैं, वो इसलिए लिखते हैं कि पीछे ही रहो, ओवरटेक मत करना, तुम्हारे भाग्य में पीछे मेरे चलना है। तो भाग्य और परिश्रम। अच्छा, इसका एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। जैसे बारिश, बारिश गिरना शुरू हुई और बारिश में नहाना कितना अच्छा लगता है कि पहली बारिश और बाहर जाकर नहाना, बचपन में कितना हम किए बारिश में जाकर नहाना। तो एक है बारिश में जाकर नहाना और एक है कुएं से पानी निकालकर नहाना, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में आसान क्या है? बारिश में जाकर नहाना आसान है, कुएं में बाल्टी डालो, मेहनत कर एक एक बाल्टी निकलेगी, ऊपर डालो फिर बाल्टी डालो फिर खींचो, परिश्रम है ना। तो रोज नहाना है तो कुएं पर निर्भर होना पड़ेगा, और यदि इक्का दुक्का समय कब नहाना होगा, जब भी बारिश आएगी, तो बारिश में नहाना भाग्य है, कुएं से पानी निकालकर नहाना परिश्रम। यह अंतर है भाग्य में और परिश्रम में। तो यदि कोई सुसंस्कृत परिवार से है तो रोज नहाएगा, है ना, और यदि रोज नहाना है तो परिश्रम आवश्यक है, कुएं से पानी निकालना आवश्यक है। एक बार एक गांव में, वो गांव नदी के तट पर था, तो इस नदी के तट पर एक साधु महात्मा बैठे, रोज नदी के तट पर ये महात्मा बैठे रहते थे और नदी को निहारते रहते थे, देखते रहते थे, देखते रहते। तो तो एक बार एक व्यक्ति जो कि उनको ऑब्जर्व कर रहा था काफी दिनों से, तो आया इनके पास, पूछा कि महात्मा जी आपको मैं देख रहा हूं पिछले एक हफ्ते से आप यहां पर बैठकर ये नदी को एक टक निहारते रहते हो, क्या माजरा क्या? तो साधु महात्मा कहते हैं कि मैं प्रतीक्षा में हूं कब ये पूरा पानी बह जाए, क्योंकि मुझे नदी पार करनी है। तो इसने वापस से कहा, क्या कहे आप? मैं प्रतीक्षा में हूं कि बह जाए पूरा पानी, क्योंकि मुझे नदी पार करनी। तो ये व्यक्ति बड़ा बेवकूफ आदमी है। तो जैसे हम लोग अभी हंस दिए, वैसे वो भी हंसने लगा। परंतु ये महात्मा जी थे, ये कुछ भी करते थे उसके पीछे बहुत गुह्य कारण हुआ करता था। तो इन्होंने इस व्यक्ति से कहा कि मैं इस गांव में इतने समय से आ रहा हूं, गांव के लोग मेरे पास आते हैं परेशानी लेकर, हमारे जीवन में ये परेशानी है, वो परेशानी है, इसको दूर कर दीजिए, फलाना फलाना इत्यादि। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो बहती नदी की तरह है। यदि तुम सोचोगे कि नदी का पूरा पानी बह जाए फिर मैं नदी पार करूंगा, तो ये उसी प्रकार से है कि मेरे जीवन की सारी समस्या सुलझ जाए फिर मैं आऊंगा मंदिर में। इंडिया फाइनल जीत जाए फिर देखना मैं कितना मंदिर आता हूं। तो होता है ना बहुत बार आध्यात्मिक कार्यों के लिए, मंदिर में सत्संग के लिए हम क्या क्या प्लान करते हैं कि ये घर की ये समस्या, काम की ये समस्या, किराने की ये समस्या, पड़ोसी की ये समस्या, हाँ सारी समस्या बह जाए फिर आऊंगा। इसलिए ये कभी नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद पिछले हमने बुधवार को, उसके पिछले बुधवार को हमने लिया था, श्रील प्रभुपाद ने एक तरफ था श्रील प्रभुपाद के जीवन का भाग्य, किस प्रकार की पत्नी उन्हें प्राप्त हुई थी, किस प्रकार के बच्चे उन्हें प्राप्त हुए थे, एक वो भाग्य था उनका, एक उनका शरीर, एक जहां पर भी वो पैदा हुए, सब कुछ यदि उसको भाग्य लें, और दूसरी ओर प्रभुपाद का परिश्रम। हाल ही में श्रील प्रभुपाद के एक प्रमुख शिष्य वो अपने मेमोरीज में कहे कि प्रभुपाद, उन्होंने गोरखपुर में कुछ लेक्चर्स दिए, बहुत ही पावरफुल लेक्चर्स प्रभुपाद ने दिए गोरखपुर में, जहां प्रभुपाद उन लेक्चर्स में कहते हैं, सो व्हेन आई वेंट टू अमेरिका इन 1965 आई डिडंट नो एनीवन, आई डिडंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, हाउ टू प्रीच, और प्रभुपाद ये वर्ड यूज करते हैं, आई वॉज लाइक अ वैगबॉन्ड, अर्थात मैं केवल जैसे खानाबदोश होते हैं ना, घूमते फिरते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वैगबॉन्ड, प्रभुपाद ने वो वर्ड यूज किया। तो ये प्रभुपाद के डिसाइपल ये प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद वेयर वुड यू वॉन्डर अलोन, हम लोग मिलने से पहले आप कहां न्यूयॉर्क में घूमा करते थे या बॉस्टन में, जब आप वहां पहुंचे थे तो प्रभुपाद कहे डॉक्स पर जाकर मैं देखता था, जहां से मैं आया था मैं देखता रहता था क्या है, कुछ पता नहीं उनको, लोग कोई जाने पहचाने नहीं, उनकी संस्कृति पूरी विपरीत, तो कौन से डॉक्स पर। ये जब इन डिसाइपल को पता चला तो इन्होंने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद डू यू नो एट दैट टाइम व्हेन यू आर विजिटिंग दोज डॉक्स देयर वाज अ सीरियल किलर हु वाज वेरी फेमस और इनफेमस इन दैट एरिया, हु वाज लाइक अ स्नाइपर, वुड लुक फॉर unknown people to shoot as a target. I'm scared just hearing this that you would wander in those docks. तो प्रभुपाद देखिए उन्होंने जो पिछली बार हमने ये चर्चा करी कि प्रभुपाद ने अपनी मनस्थिति से दूसरों की परिस्थिति बदली, उनकी मनस्थिति वो फिक्स्ड थी उनके गुरु महाराज के आदेश। ये वर्ष हम 50वीं वर्षगांठ बना रहे हैं इस्कॉन के स्थापना की, 50 साल हो गए और प्रभुपाद जाने के पश्चात ये इस्कॉन संस्था जो कि फैल रही है इतनी। हाल ही में हमारे मायापुर के गुरुकुल का एक वीडियो निकला है, एक वहां के गुरुकुली ने एक वीडियो निकाला, बहुत ही सुंदर, आजकल व्हाट्सएप पे भी वो सर्कुलेट हो रहा है, बहुत सुंदर ये वीडियो है जिसके अंदर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे जो श्रील प्रभुपाद एक दिन अकेले वहां पर, जो उन्होंने कहा कि एज अ वैगाबॉन्ड घूमते फिर रहे थे, कुछ पता नहीं कौन सी दिशा में कैसे इस्कॉन की स्थापना वो करेंगे, और मायापुर जहां पर इतना भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम, तो वहां मायापुर में एक इंटरनेशनल गुरुकुल है। हम विद्यार्थियों को लेकर वहां पर गए थे हमारी एक यात्रा में। वहां पर आप देखोगे कि ये गुरुकुल के बच्चे, कोई अमेरिका से है, कोई यूके से है, कोई यूरोप से है, कोई अफ्रीका से है, कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री से है, कोई रशिया से है, वो लोग सब वहां पर। हम लोग यहां पर फक्र करते हैं कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में हैं, इस एकेडमी में है, उस एकेडमी में है, इंग्लिश मीडियम में फलान है ढिकान है सब कुछ। यहां पर ये बच्चे इंटरनेशनल सब इन देशों के, किस प्रकार का वो लोग जीवन जी रहे हैं, ये एक श्रील प्रभुपाद का करिश्मा है।
I know it's been a long time since I last spoke to you. I've been thinking about you a lot lately. And I guess I didn't have much to say until now. By the way, it's me, Purushottam. There's Rishan. He's 15 now, so he gets to ride the elephant. Rishan says that I could also ride up there too, but my legs are too short, so I might fall off. No one has ever fallen off the elephant before. But I don't want to be the first one. There's Baba, of course. After we left Florida, he moved us here to Mayapur because he thought this would be the best place for us to grow up. I was too young to remember much about America. All I really remember is my life here in Mayapur. I remember when I first came here, I thought this was just some nice place with cows, palm trees and the Ganga. But slowly, slowly, I realized that this is a very special place. Now, just feels like home. So many people visit Mayapur from all over the world for the deities, for the kirtans, for the festivals, and especially for learning about Krishna consciousness. I am also learning how to be a good devotee of Krishna, so that someday you can be proud of me. Maybe you already know this, but last year I received Upanayana. That means I am now learning Puja and Yajna. Not for the big deities, of course. Not yet, at least. In school, I've made so many friends from all over the world. I'm now a vice group leader, which means that I take care of all these small boys. Like, for example, there's Vasudev. He's 7. He's from Israel. Here's Marisham. He's 8, and he's from Russia. 9. Same thing. Also in my service group is Sahadev. He likes to work in the backfield. He's 14, and he's from Ecuador.
Colombia.
Oh, right, Colombia. And there is the head boy, who takes care of all of us, Shigarbubu, from Colombia. Or was it Ecuador?
Can I have some Sarah City Bank for her?
I know, I'm almost done. This is Vedanta, from Mumbai. This is Naren, from Dubai. He's the kitchen in charge. That means if breakfast is late, like it is today, then it's his fault.
No thanks to you, Puro.
I'm busy. Little Baldev is from Taiwan. He's really good at kirtan. Big Baldev Mishai is from Latvia. Gopal is from New Zealand. And this is Mukunda. He was born in Mayapur. All the other boys say he's a pure devotee, that he talks to Tulsi Maharani and she actually talks back to him. I don't know if that's true. That's Radisham, of course. You might be happy to know that he really loves Sanskrit. He's one of the best in the whole school. Also, I wanted to introduce you to my best friend, Baba. She's really sweet and beautiful, and she weighs about 400 kilos. That's her. Yeah. And you should also meet Raju. Before his operation, he was really aggressive and tried to bite people. No, not him. That's Ramdas. I was talking about the horse. I don't ride him, though. It's mostly Garanga who does. Sometimes I wonder if the whole world comes to Mayapur to study your books, and if studying is so important, then why do I have to spend so much time shoveling cow dung? Adi Dev Mahashaya was explaining why in class the other day. He said that we are not controllers and enjoyers. We are servants. Devotional service is what makes the soul happy. Every soul's duty is to serve Krishna. Service trains us to be humble, which is essential for bhakti. We're brahmacharis. So we serve our teachers, the school, and the whole ISKCON family. That includes Mother Cow and Father Bull. But even they have to serve. Even though it's tiring, at the end of the day, it's worth it. If Krishna is satisfied, then we automatically feel satisfied. And when we all cooperate together in this spirit of service, the result is really nice. But today is actually less work than normal, because it's Sunday, free day. We get to play. Go for archery. And meet our parents. Today is different though, because my father is taking us somewhere really exciting. Somewhere he had promised to take us for a very long time. He said one of the directors of the TOVP, Raj Bilaswaru, is taking us on a special tour of the new temple. I've never been there before. I can't wait. Dear Srila Prabhupada, because I'm young and foolish, I never really appreciated what it is you gave us. I want to thank you so much for starting ISKCON Mayapur. Because of Mayapur, Krishna consciousness will last for a long time in this world, because everyone will come here to learn about it. You started 108 temples all over the world. Today, you have over 700 centers worldwide. But now, here comes the most important center of them all, the Mayapur Chandradaya Mandir. After the TOVP is finished, we'll be getting over 50 million visitors a year. Can you imagine all those people doing kirtan, taking prasadam and reading your books? So Srila Prabhupada, I am trying to take up many responsibilities so I can make you happy. Please bless me so that in the future I can do something that will make you much more proud of ISKCON. But anyways, I have to sleep now because it's getting late and tomorrow is another big day. Thank you very, very much for your love and for showing me the path back to Godhead. I can't wait for tomorrow.
कहा करते थे कि यदि अभी बहुत से लोग हैं जो इस हरे कृष्णा मूवमेंट को सीरियसली नहीं ले रहे हों या ये सोच रहे हों कि ठीक है ये भी एक इनकी संस्था है, किनकी संस्था है, ये जो नाचते फिरते रहते हैं हरे कृष्णा वाले, ये उनकी संस्था है। प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि ये हरेक भारतीय की संस्था है। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है यदि गंभीरता से नहीं ले रहे हो अभी ये, परंतु एक दिन आएगा, श्रील प्रभुपाद कहे, वन डे द वर्ल्ड विल रिमेंबर दैट दिस हरे कृष्णा मूवमेंट इट हैड मेड the world a better place to live. तो परिस्थिति वही भाग्य और परिश्रम। अधिकांश हम भारत में हम ये समझते हैं कि बस जो मेरे भाग्य में आएगा उसे मैं करता रहूं करता रहूं करता रहूं। प्रभुपाद ने कर दिखाया कि यदि उनके भाग्य का रास्ता आप देखो और उस भाग्य के रास्ते से प्रभुपाद बाहर आकर उन्होंने अपने परिश्रम का रास्ता जो चुना और प्रभुपाद के इस परिश्रम के रास्ते का नतीजा है आज हम लोग यहां पर सब हैं। ये जो इतना सुंदर गुरुकुल और इतने बच्चे और ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जहां पर लाखों और करोड़ों की संख्या में भक्त आके और आने वाले इन वर्षों में लाभ उठाएंगे, एक ऐसा जीवन जिएंगे। एक भक्त से हाल ही में मैं डिस्कस कर रहा था चार नियम के विषय में, वो पूछ रहे थे कि चार नियम जो है ये इतने जरूरी क्यों हैं, ये मांसाहार नहीं करना, नशा जुआ ये सब नहीं करना है, क्यों इतना जरूरी। तो मैंने उनको कहा कि देखिए भाई, स्थिति ऐसी है आजकल कि यदि स्वेच्छा से चार नियम पालन नहीं करोगे तो अनिच्छा से करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आजकल बीमारियां जो इतनी बढ़ रही हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने आप आजकल बोल रहे हैं कि अरे भाई तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल डेंजर लिमिट से ऊपर जा रहा है, बंद करो ये अंडा मच्छी। तो जब डॉक्टर बोलेगा तो चार नियम पालन करने ही पड़ेंगे, तो क्यों ना स्वेच्छा से पालन कर डॉक्टर के बजाय भगवान को प्रसन्न कर दो। यहां पर डॉक्टर को खुश करने के लिए चार नियम पालन कर ही रहे हैं लोग आजकल। तो करता मरता क्या ना करता, करना ही पड़ेगा तो पहले कर लो एंड गेन द क्रेडिट ऑफ डूइंग इट वॉलंटरली, because anyways eventually you will have to follow the four principles. Your health will फोर्स यू टू फॉलो द फोर प्रिंसिपल्स, और हो रहा है. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने दिखाया कि भाग्य और परिश्रम में क्या महत्वपूर्ण है. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. बहुत समय पहले हमने ये एक पुश स्टोरी की, एक व्यक्ति वो पत्थर तोड़कर बेचा करता था, स्टोन कटर था वो. तो वो धीरे धीरे बहुत दुर्बल हो गया, काम नहीं कर पा रहा था. भगवान से उसने याचना की, प्रार्थना करने लगा, तो भगवान की आवाज उसको सुनाई दी और भगवान ने कहा कि तुम्हारे गांव में जो बड़ा पत्थर तुम देख रहे हो, जाओ, गो पुश दैट रॉक, धक्का मारो उसे. अब ये पहले से ये कमजोर हो रहा है, दुर्बल है, और यहां पर इसको भगवान कह रहे हैं गो पुश दैट रॉक. ठीक है, भगवान ने कहा है, कुछ होगा उस पे, इसके पीछे तात्पर्य. गया, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते, एक महीना, वो पत्थर इतना भारी कि वो टस से मस नहीं हो रहा है. तो इसने सोचा क्या ये भगवान ने मुझे आदेश दिया. तो 6 महीने तक उसने श्रद्धा पूर्वक जो भगवान ने कहा था किया. फिर भगवान से पूछता है कि क्या आपने मुझे कहने के लिए कह दिया, क्या फायदा, वो पत्थर तो हिल ही नहीं रहा है. तो भगवान ने कहा मैंने तुमको हिलाने के लिए नहीं कहा था. आई नेवर आस्ट यू टू मूव द रॉक, आई ओनली आस्ट यू टू पुश द रॉक. तो इसने कहा तो लेकिन फायदा क्या हुआ. भगवान ने कहा लुक एट योर मसल्स, द रॉक इज देयर बट योर मसल्स हैव बिकम सो स्ट्रांग दैट नाउ यू कैन कंटिन्यू योर स्टोन कटिंग बिजनेस. तब उसे समझ में आया कि अक्सर भगवान आदेश क्या देते हैं, जाकर धक्का मारो. भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जो तुम धक्का मारोगे वो वस्तु हिलेगी, नहीं, लेकिन तुम हिल जाओगे. वस्तु हिले या न हिले परंतु तुम हिल जाओगे. इसलिए पुश स्टोरी का नाम क्या है, द पुश स्टोरी. और इसका एक एक्रोनिम बनाया है, प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस. इसलिए हम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं, तो ये प्रार्थना क्या है, तब तक कि जब तक हमारे अंदर हमारी मनस्थिति बदले ना. हरे कृष्ण महामंत्र से परिस्थिति नहीं बदलेगी परंतु हमारी मनस्थिति बदलेगी. इसलिए ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं एक साधक के जीवन, टेस्ट एंड टेस्ट. क्या ही है कि भगवान हमको उनके स्वयं का टेस्ट चखाना जब चाहते हैं तो उसके साथ या उसके पहले हमें परखते हैं. सो व्हेन वी आर टेस्टेड देन वी कैन टेस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस. ये है भगवान की सांत्वना, गॉड टेस्ट यू बिटर सो दैट यू कैन टेस्ट हिम बेटर. आपको यदि कोई मीठा खाना है तो मीठे से पहले यदि करेले की सब्जी खाई है आपने तो वो मीठा जो है वो और अच्छा लगता है खाने के समय, परंतु मीठे के पहले कुछ मीठा खाया है तो इसकी मिठास इतनी. इसलिए भगवान चाहते हैं कि उनके इस अनुभव, इस मीठे अनुभव को हम पूर्ण प्रकार से करें. तो कई बार भगवान हमको टेस्ट करते हैं. ये एक हमें बचपन में स्टोरी थी, द गॉड्स एम्ब्रॉयडरी. एक घर में एक माँ, वो अपने कुर्सी पर बैठी रोज वो एक स्वेटर बुना करती थी, एम्ब्रॉयडरी उस पर किया करती थी. तो छोटी सी लड़की वो अपने खेलते खेलते अपनी माँ से पूछती थी कि ये रोज तुम क्या करते रहती। तो माँ ने कहा कि मैं एक बहुत सुंदर सूर्योदय का दृश्य इसके ऊपर बुन रही हूं, सूर्योदय का दृश्य। तो ये लड़की अब फर्श पर खेलते हुए ये जब देखती थी, आपने अगर ये अनुभव किया है कि जब आप कुछ बुनते हो कपड़े के ऊपर, तो जो उसका दूसरा ऑपोजिट साइड होता है उसमें कुछ ठीक से नहीं दिखता, सब डिस्टॉर्टेड दिखता है। हाँ, आप अगर यहां पर कुछ सामने बुन रहे हो सूर्योदय का दृश्य, तो उसके ऑपोजिट साइड उस कपड़े पर सब कुछ बहुत उल्टा दिखेगा। तो ये लड़की जब फर्श से खेलते हुए ऊपर देखती तो उसको सब वो उल्टा सीधा दिखता, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड में देख रही थी। तो वो सुनती थी कि माँ क्या बना रही है परंतु मुझे क्या दिख रहा है, तो उसे विश्वास नहीं होता था ये क्या बोलती है माँ। तो माँ हर बार यही जवाब देती थी कि बहुत सुंदर सूर्योदय का दृश्य मैं यहां पर बुन रही हूं। फाइनली जब वो हो जाता है तो माँ उस बेटी को अपने गोद में बिठाती है और फिर कहती है, अब मेरे गोद में बैठकर देख, क्योंकि अब तक इसे तू कहां से देख रही थी, तेरे लेवल से देख रही, अब तू यहां मेरे गोद में बैठकर देख। तो बचपन में हमको ये कहानी सुनाई गई थी कि जो माँ है भगवान की तुलना की गई है, कि भगवान हमारे सब की जिंदगियों को बुन रहे हैं और हम लोग उस बच्चे के समान अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं, जैसे कि वो बच्ची नीचे से उस कपड़े को देख रही थी, तो उसे सब कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। सिमिलरली वी ऑल्सो कांट सी हाउ गॉड इज एम्ब्रॉयडरिंग अवर लाइफ एंड फाइनली व्हेन गॉड प्लेसेस अस ऑन हिज लैप एंड शोज अस, देखो ये सुई यहां से मैंने जब डाली थी, अर्थात तेरे जीवन में जब मैंने तुझे कुछ दुख दिए थे, तो वहां से तुझे यहां लाने के लिए, यहां से तुझे यहां लाने के लिए, और फाइनली जब पूरा दृश्य बुन जाता है, तब हमें समझ में आता है कि भगवान हमारे जिंदगी को इतना सुंदर बनाने के लिए जो कुछ कर रहे थे कर रहे थे। तो ये शिक्षा है, गॉड doesn't promise to solve all of your problems, but he definitely won't let you face those problems alone. Har samay bhagwan hamare saath hain, wahi rahenge chahe is janam mein, agle janam mein, pichle janam mein aur kitne bhi janam mein, bhagwan hamare sab parmatma ke roop mein hamare saath rehte hain. When you run alone it's called a race, when you have God running along with you, it's called grace. Or finally, at the end, everything will be okay. And if it is not okay, then know that it is not the end. So, ye hai santvana. Ab hum prarambh karenge भगवान श्री कृष्ण की गमन लीला। तो अभी तक हमने सांत्वना तक जनन वर्णन वंदन सांत्वन, और अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जो पांचवा पहलू है वो है भगवान की गमन लीला। तो आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, भगवान पैदा हुए कंस के कारागृह में और वहां से वसुदेव जी ने भगवान को नंद गोकुल लेकर गए, और पहले संक्षिप्त रूप में आप देख लीजिए और उसके पश्चात फिर हमारे जो आचार्य इस पूरे गमन लीला के ऊपर जो उत्प्रेक्षा किए हैं हम फिर उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो ये वीडियो के पहले कुछ एक मिनट, पता नहीं इन्होंने कुछ ये जो इरोस कंपनी ने कुछ अपना एडवर्टाइजमेंट डाला है, तो वो उस पर आप मत जाइएगा, उसको हम डिलीट नहीं कर पाए.
Feel the undying romance only on Eros Now.
उस रात भी ऐसी ही तेज बारिश हो रही थी.
महाराज आप चिंतित क्यों हैं?
तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि देवकी की गर्भ से जन्म लेने वाली आठवीं संतान मेरे लिए काल बनेगा और आज देवकी आठवीं संतान को जन्म देने वाली है. मेरा मन बड़ा व्याकुल है और ऊपर से ये प्राकृतिक आपदा, ऐसी तेज एवं मूसलाधार वर्षा मैंने आज तक नहीं देखी. ऐसा लगता है कि यह वर्षा पूरे के पूरे मथुरा को अपनी गोद में समा लेना चाहती है.
आप सर्वशक्तिशाली हैं भगवान, देवताओं को भी वश में कर लेने की शक्ति है आप में. जिस तरह आपने देवकी की 7 संतानों को मृत्यु लोक पहुंचा दिया, उसी तरह आप उसकी 8वीं संतान का भी विनाश कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. आप निश्चिंत होकर अपने शयन कक्ष में जाएं और विश्राम करें.
नहीं, जब तक मैं उस 8वीं संतान को स्वयं अपने हाथों से मृत्युलोक नहीं पहुंचा देता, तब तक मेरी आंखों में नींद कहां. जाओ और देख कर आओ देवकी को.
जो आ गया. ध्यान रहे, जैसे ही देवकी संतान को जन्म दे उसकी सूचना तुरंत राजमहल में दी जाए.
जो आ गया.
महाराज की जय हो. महाराज आप निश्चिंत रहें, मुझे नहीं लगता कि देवकी को आज संतान होगी, इसलिए आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए. वैसे भी हमारे सारे सैनिक और सिपाही पहरे पर हैं.
ध्यान रखना.
देवकी, तुमने पुत्र को जन्म दिया है. ये देखो, ये हमारा 8वां पुत्र ही कंस का काल बनेगा.
किंतु
चिंतित मत हो देवकी, मैं इसे गोकुल पहुंचा कर आता हूं. मैं धन्य हो गया प्रभु. हे प्रभु, मैं इस उफनती हुई नदी को कैसे पार कर पाऊंगा? आपका ये उपकार कैसे चुका पाऊंगा? कैसी बातें करते हैं आप, ये तो प्रभु की इच्छा है.
यहाँ पर आपको ये इसलिए दिखाया कि 5 मिनट में तो हमने देख लिया कि भगवान पैदा हुए, बेड़ियां सारी खुल गईं, ताले खुल गए, द्वार खुल गए और बहुत आसानी से वसुदेव जी भगवान को नंद गोकुल ले गए, जिसको गमन लीला कहते हैं। परंतु एक एक इसके जो पहलू हैं कि जो बेड़ियां हैं वो क्यों खुल गई, कैसे खुल गईं, द्वार क्यों कैसे खुल गए, द्वारपाल जो थे उनका हाल क्या हुआ, ब्रजवासियों की स्थिति क्या थी, फिर बाद में अनंत शेष जमुना उन्होंने जो रास्ता दिया, जो वर्षा के बादल उनके भाव क्या थे, तो ये सब की विस्तार से चर्चा हम करेंगे हमारे अगले सत्र में। इसलिए ये ट्रेलर था कि अब हम जो पांचवा अंतिम पहलू है भगवान के जन्म का, जो कि उनकी गमन लीला है, उसके ऊपर आए हैं सांत्वन के पश्चात। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी।
हरे कृष्णा। तो आज का जो